ఓం శాంతి. మిలన్ కీ మాజ్ మనానా ఏవం కమ్జోరియో కో జలానా మిటానా. तो संगम युग है मौजों का युग, क्योंकि इस संगम युग में हम सभी परमात्म पालना में पल रहे हैं. सारे कल्प में तो देवताओं की और मनुष्यात्माओं की पालना में पलते हैं, लेकिन विशेष संगम युग में परमात्म पालना का सौभाग्य हमें मिलता है. इसलिए ये जीवन मौजों का जीवन हम अनुभव करते हैं, और ऐसे मौजों के जीवन में मिलन मनाने की मौज भी हम अनुभव करते हैं. मिलन मनाने की मौज अनुभव करना अर्थात परमात्मा से विभिन्न रूप में विभिन्न संबंधों के द्वारा खुशी आनंद की और अलौकिक मस्ती की अनुभूति करना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ हम मिलन मनाते हैं, तो उसके मिलन में हमें मौजों का अनुभव स्वतः ही होता है. हमें बहुत खुशी की, नशे की, अलौकिक मस्ती की अनुभूति स्वतः ही होती है. लेकिन इस संगम युग में मिलन मनाने की मौज अगर हमें अनुभव करना है, तो उसके लिए हमें कुछ पूर्व तैयारी भी करना जरूरी है. कैसी तैयारी करना है? क्योंकि निराकार बाप के साथ मिलन की मौज की अनुभूति करना चाहते हैं, तो निराकारी स्थिति में स्थित होने की पूर्व तैयारी करनी होगी. और भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति के द्वारा मिलन की मौज अनुभव करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना, क्योंकि फरिश्ता स्थिति के माध्यम से ही भगवान के साथ मिलन मनाने का आनंद, मौज की अनुभूति हम कर सकते हैं. हम सभी कहते हैं हमारा शिव बाबा से बहुत प्यार है, ब्रह्मा बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उस प्यार की निशानी क्या है? उस प्यार का प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? जितना शिव पिता के साथ हमारा प्यार होता है, उतना हम उनके समान निराकारी स्थिति में सदा स्थित रहते हैं और उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते रहते हैं. ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा प्यार है, उसका प्रमाण है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहना, ब्रह्मा बाप समान. और उनके जैसा जीवन श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते रहना, तो इस जीवन में मिलन मनाने की मौज अगर हमें करना है तो इन दोनों स्थितियों को हमें बहुत अच्छी तरह से पक्का करना होगा। उसके लिए जितना हो सके हमें निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। विधि पूर्वक अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। विधि पूर्वक अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना अर्थात इस पुराने देह के वाहन से बिल्कुल न्यारे अनुभव करना और स्वयं को चमकता हुआ स्टार अनुभव करना। तो एकांत में बैठकर हमें बहुत अच्छी तरह से आत्मिक स्थिति का दर्शन करना है, उसका साक्षात्कार करना है, उसमें स्थित होना है और उस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, तो शिव बाबा के साथ मिलन मनाने की मौज अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये अशरीरी स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, न चाहते हुए निराकारी बाप के साथ हमारा प्यार बढ़ता जाता है, क्योंकि देह का भान होने से बुद्धि हमारी देह की दुनिया में भटकती है, लेकिन जैसे आत्मा का भान, आत्मा का अभ्यास पक्का होता है, तो न चाहते हुए हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाने लगती है और मिलन मनाने की मौज हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने आप सभी को बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है, 3-4 दिन ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर साधना करने का। तो साधना में बहुत सुंदर गहन अनुभव मुझे करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा सदा बना रहे, तो अशरीरी स्थिति का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है, क्योंकि वर्तमान समय बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसे सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करते जाना। तो अशरीरी स्थिति हमें बहुत अच्छी तरह से पक्का करते जाना है, इसको हमें हल्का नहीं लेना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ, अंतिम पाठ यही पहला पाठ है, इसको हमने रियलाइज करना जरूरी है। जितना हो सके हमें अपने सत्य स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है, और जो भी हमारे सामने आता है उसको निराकारी दिव्य स्वरूप में ही देखने का अभ्यास अंदर ही अंदर करते जाना है। दूसरी बात, बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने के लिए फरिश्ता स्थिति को निखारते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप से मिलन मनाने का आनंद हम थोड़े समय के लिए जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा कुछ नवीनता चाहता है। मौज की अनुभूति तभी हमें अनुभूति होती है जब पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ नवीनता हम अनुभव करते हैं। इसलिए सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि निराकारी बाप के साथ ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से ही मिलन हम मना सकते हैं। तो मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूं और शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से बहुत सुंदर संबंधों की अनुभूति करती रहूं। इसके लिए सारे दिन भर में फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। फरिश्ते के दो विशेषताएं मुख्य होती हैं। पहली विशेषता है फरिश्ता अर्थात मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है। जैसे जैसे ये भान हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये स्थूल शरीर पांच तत्वों से बने हुए शरीर का भान हटता जाता है, मिटता जाता है। और दूसरी विशेषता होती है फरिश्ते की, फरिश्ता फर्श वासियों से, फर्श से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, उसके सभी रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं। तो इस अनुभूति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। इसलिए चलते फिरते ऊंटते बैठते इस फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को गहराई से हमें बढ़ाते जाना है। फरिश्ते में तीन बातों की संपन्नता भी अनुभव होती है। फरिश्ता ईश्वरीय नशे से संपन्न होता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है और ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है। तो इन तीनों बातों की संपन्नता हमें अपने फरिश्ता स्वरूप में बढ़ाते जाना है। नशा भी दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा बढ़ता जाए, ईश्वरीय शक्तियां भी बढ़ती जाए और ईश्वरीय गुणों का श्रृंगार भी हमारा बढ़ता जाए, तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। उसके बाद मिलन मनाने की मौज का अनुभव हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारे कल्प में 84 जन्म हमने अनेक आत्माओं के साथ बिताए हैं, अनेक आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अकाउंट होता है, उस अकाउंट को भी हमने जीरो करना है। और किसी भी व्यक्ति के साथ रिंचक मात्र भी लगाव झुकाव ना हो उसके लिए हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। जितना जितना हम भगवान के साथ संबंधों की अनुभूति बढ़ाते जाते हैं उतना इस साकारी दुनिया में रहते हुए देहधारियों से न्यारे अनुभव करते रहते हैं, कोई भी संबंध हमें नहीं खींचता है। ये बहुत भाग्य की निशानी है। पुरुषार्थी जीवन में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अपने तरफ आकर्षित न करें और हम स्वयं को आजाद पंछी स्वतंत्र पंछी अनुभव करते रहें, ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। इसलिए इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है कि कोई भी संबंध हमें अपने तरफ नहीं खींचे। अभी अमृत वेले से रात्रि तक हमें भगवान के साथ मिलन मनाने की मौज की अनुभूति करते जाना है। सारे कल्प में आत्माओं के साथ मिलन मनाते जाएंगे, मिलन मनाते ही रहेंगे सतयुग से लेकर, लेकिन हमें जो गोल्डन चांस मिला हुआ है भगवान के साथ डायरेक्ट मिलन मनाने की मौज की अनुभूति करना, वो चांस हमने नहीं छोड़ना है। उस चांस का हमने पूरा लाभ लेना है। एकांत में हमें बैठकर सोचना है, जो बातें सारे कल्प में करने के लिए हमें नहीं मिलती है वो हमें संगम युग में करनी है। मोबाइल के साथ हम खेलते हैं, साइंस के साधनों के साथ खेलते हैं, वो तो दूसरे युगों में भी हमें चांस मिलता है, तो संगम युग में हमारा अमूल्य समय उन बातों में हमें नहीं गंवाना है। जो बातें दूसरे युगों में नहीं मिलती हैं उसके पीछे हमें समय सफल करते जाना है। तो भगवान के साथ मिलन की मौज की अनुभूति करने का चांस केवल हमें संगम युग में ही मिलता है, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा हमें लेना है। और मिलन मनाने के द्वारा मौज की भी अनुभूति करना है, बहुत एक अलौकिक मस्ती की, सुख की, आनंद की अनुभूति करना है, और मिलन के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई भी हमें करके स्वयं को मालामाल करते जाना है, खजानों से भरपूर करते जाना है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमने बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा कहते हैं 24 घंटे मैं आपको सेवा करने के लिए, कंपनी देने के लिए, मिलन मनाने के लिए ऑफर देता हूं। भगवान हमें ऑफरिंग देते हैं, हमें गोल्डन चांस देते हैं कि मेरे साथ मिलन मनाते चलो, मौज की अनुभूति करते चलो। तो हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मौका बार बार हमें नहीं मिलता है। और संगम युग भी हाथी चला गया, अभी पूंछ बाकी है, अर्थात थोड़ा समय संगम युग का बाकी है, इसलिए पल पल का हमें लाभ लेना है, सफल करना है और मिलन मनाने की मौज की अनुभूति को बढ़ाते जाना है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों के रूप में। जैसे आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संबंध हमें बाप के रूप में अनुभव करना है। बाबा के साथ मिलन मनाते चलो, बाप और बच्चे का आपस में जिगरी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, तो उस प्यार के माध्यम से हमें बाप का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। तो लौकिक बाप से जो हमारा थोड़ा सा लगा होता है, उसकी रह रहे के हमें कभी याद आती है, वो भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए इस मिलन मनाने की मौज अच्छी तरह से हमें लेनी है, तो उसके लिए तीसरी बात आवश्यकता है, अशरीरी स्थिति, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति के साथ तीसरी बात की आवश्यकता है, हमारा बाबा के प्रति दिल का सच्चा प्यार परसेंटेज वाइज बढ़ता जाए, तो मिलन मनाने की मौज हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा संबंध, जब हम बाबा के सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा को हमें शिक्षक के रूप में अनुभव करना है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार सर्वशक्तिवान भगवान हमें साकार रूप में आकर पढ़ाएंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और वो निराकार भगवान दूर देश से हर रोज आता है और मुरली के माध्यम से बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरह से हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है और मधुर शिक्षाओं से सजाता है। तो टीचर का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे, उसके लिए जो टीचर मुरली में होमवर्क हमें देते हैं, उस होमवर्क को हमने पूरा करके ही दूसरे दिन मुरली सुनने के लिए आना है। तीसरा संबंध, जब हम सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, सेवा क्षेत्र पर जाते हैं, तो उसके पहले हमें बाबा के रूम में जाके बाबा को सद्गुरु के रूप में मिलन मनाना है बाबा के साथ। हमने छोटी मोटी प्राप्तियों के लिए द्वापर युग से बहुत मेहनत की है, अभी मेहनत से छुड़ाने के लिए बाबा हमें वरदानों की पालना देने के लिए सद्गुरु बनकर पालना दे रहे हैं। इसलिए बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान हमें लेना है शक्तियों के द्वारा, और बाबा का वरद हस्त हमें अपने माथे पर अनुभव करना है। और सद्गुरु का दिल अगर हमें जीतना है तो सद्गुरु ने दिए हुए महामंत्र का जाप भी गुप्त रीति से हमें करते जाना है और उनकी ही छत्र छाया में सदा चलते रहना है। उसके बाद हमें दूसरा संबंध कौन सा अनुभव करना है, भगवान मेरे दोस्त है। भाई सभा में जो भी बाबा के बच्चे दूर दूर से आए हैं, खास बच्चे हैं या आम बच्चे हैं, बोलिए। हाँ जी बोलो ना, वलसाड़ वाले खास बच्चे। बापरे बापरे, आम बच्चे नहीं है, आम इतने खाए आपने और आम बच्चे नहीं कहते। सूरत वाले, सूरत दिल्ली, देखो भाई इतने आम खाए आपने सीजन में और आम बच्चे नहीं कहते, खास बच्चे हैं। खास बच्चों की निशानी क्या है बताओ भाई बहन जी? खास उल्टा क्या है? सखा, जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करता है वो खास बच्चे कहलाते हैं। हम अपने दिल का जो सीक्रेट है वो सबसे छिपाते हैं, जहां हमें सखा मिल जाता है सारी उल्टी कर देते हैं, सारा राज उनको बता देते है ना भाई। तो खुदा मेरा दोस्त है और उनके साथ मुझे दिल की बातें करते रहना है और खुद को एकदम लाइट अनुभव करते जाना है। अमेरिका से आपका दोस्त 15 साल के बाद आता है तो उसके पीछे लगे रहते हैं और वो आपके साथ में बैठता है, आप बहुत हल्का फुल्का अनुभव करते हैं, उसके कंपनी को एंजॉय करते हैं। अभी ये मेरा दोस्त 5000 वर्षों बाद मुझे मिला है और ये ऐसा दोस्त सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इमरजेंसी के समय जो हमें मदद करने के लिए दौड़ता है वो सच्चा दोस्त कहलाता है। सर आजकल सभी मतलब के दोस्त हैं, जब आप इमरजेंसी के समय फोन करेंगे तो मुंह अपना फिराएंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। अंतिम समय जब मैं समस्याओं के घेरे में स्वयं को पाऊंगा तो मेरा दोस्त जो खुदा है वही नंगे पैर दौड़ा दौड़ा मुझे मदद करने के लिए आएगा। इसलिए उसके साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती, पवित्रता के प्रॉमिस की गहरी दोस्ती हमें बढ़ाते जाना है। और उसके साथ खाओ पियो नाचो गाओ मौज मस्ती करो, मिलन मनाने का आनंद लेते रहो। खुदा मेरा दोस्त है भाई, रास रचाओ, उसके साथ खाओ, उसके साथ बैठो, उसकी कंपनी का एंजॉय करो बहुत मस्ती से। खुदा के साथ दोस्ती को अच्छी तरह से अनुभव करो, निभाते जाओ। फिर पांचवा संबंध है, बाबा को हमें बच्चा भी अनुभव करना है। माताएं कहती हैं हमें कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी ये तो कृष्ण का भी बाप है, कृष्ण से भी बढ़कर चढ़कर है। ऐसा बच्चा तो सारे कल्प में आपको नहीं मिलने वाला है। ये दुनियावी बच्चे तो हमें स्मशान तक ले जाएंगे और ये बच्चा तो मुझे परम धाम ले जाएगा, घर और सतयुग में राजधानी में भी छोड़ेगा लेकर। ऐसा बच्चा मुझे सारे कल्प में नहीं मिलने वाला है। लेकिन बाबा को बच्चा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कुमार है कुमारी है तो भी हमने बाबा को बच्चा बनाना है। बच्चा बनाना माना बाबा को वर्षा देना। वर्षा देने के बिना, बाबा को वारिस बनाने के बिना हमें बाबा वारिस नहीं बनाते हैं। आजकल के तो बाबा को हमने बच्चा बनाना है, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी गाई जाती है अनुसया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना बच्चा मानती थी और उनको हर रोज नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी, बहुत प्यार करती थी। तो हमें भी बाबा को बच्चा बनाकर उनको वर्षा जरूर देना है, क्योंकि वर्षा जब तक नहीं देते हैं तब तक बच्चा संतुष्ट लौकिक में भी नहीं होता है। इसलिए हमें वारिस बाबा को जरूर बनाना है। फिर छठा संबंध है, बाबा मेरी माँ है। कितने भी हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमें माँ की ममता नहीं भूलती है। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मेरे शरीर की रचना की और मेरे लिए कितनी मेहनत किया, कितने रातें नींद मेरे लिए नहीं की, मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन माँ की ममता मुझे माफ करना, ऐसे लोग दुनिया में कहते हैं। ऐसे लौकिक माँ की ममता को भूलने के लिए हमें बाबा को अलौकिक माँ के रूप में हमें अनुभव करना है, क्योंकि ये बहुत निराली माँ है, ममतामयी माँ है। जब कोई हमारे जीवन में समस्या आती है, तूफान आता है, तो ये माँ अपने आंचल में हमें छिपा लेती है, तूफान से हमें सदा सेफ रखती है। इसलिए इस माँ के साथ मेरा बहुत दिल का सच्चा स्नेह भी हो और इस संबंध को मुझे हर रोज अनुभव करते जाना है। माँ की गोदी में रात को सोना है, माँ का प्यार और दुलार भी हमें अनुभव करते जाना है। तो धीरे धीरे मिलन मनाने का मौज जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहेंगे। फिर सातवां संबंध है, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। इस संबंध के द्वारा दिल का 100% प्यार आप बाबा के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं भाई नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं आत्मा बाबा की सजनी हूँ। वो मेरा साजन हर रोज मुझे दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाता है और उस साजन के महिमा के गीत भी मेरे दिल में सदा बसते रहते हैं। मैं उस साजन से बेहद प्यार करती हूँ और मेरा सलोना साजन भी मुझ सजनी से बेहद प्यार करते हैं। तो एक दो के प्यार में हमें खोए रहना है, बहुत सुंदर मिलन मनाने का आनंद लेते जाना है। ये रिश्ता कुछ दीवाना ही है। इस रिश्ते के द्वारा हम बाबा को अपने साजन के रूप में अनुभव बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आठवां संबंध है, बाबा मेरा सर्जन है। कोई भी पुरानी बीमारी है, कोई भी पुरानी कमजोरी है, उसको खत्म करने के लिए, पुराने संस्कार को मिटाने के लिए हमें रूहानी सर्जन की मदद लेनी है। उसका आह्वान करना है और बाबा को बोलना है, हे रूहानी सर्जन, ये मेरी पुरानी बीमारी मैं अभी नहीं चाहता हूँ, इसको खत्म कर दो, इसको जड़ से इसका ऑपरेशन सर्जरी कर दो। तो बाबा उस पुरानी सर्जरी से आपको सदा के लिए मुक्त करेंगे। तो बाबा को हमें यूज करते जाना है। और दूसरा संबंध है, बाबा मेरा गाइड है। जब भी दुविधा में हम मूंझ जाते हैं तो हमें बाबा को गाइड के रूप में अनुभव करना है, बुलाना है और बाबा से गाइडेंस लेना है। बाबा ही ऐसे निस्वार्थ गाइड हैं, यथार्थ गाइड हैं, जो हमें यथार्थ गाइडेंस देते हैं। और दसवां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है, सर्वोच्च रक्षक है। उसका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है, वो मेरा बैकबोन है, वो सदा मेरे साथ रहता है। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, प्यारी बच्ची हूँ, वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता है। वो बहुत मेरा प्यारा बाप है। तो उस संबंध को भी हमें अनुभव करते जाना है। और ग्यारहवां संबंध, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करते जाना है। एक का डर सदा बना रहे तो कोई भी छोटी मोटी भूल हम नहीं कर सकेंगे, नया हिसाब किताब नहीं बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से संगम युग को, मौजों का युग अनुभव करेंगे। अभी कमजोरियों को समाप्त करना, कमजोर मतलब जोर कम है, कम जोर मतलब जोर कम है, शक्तियां कम है और दम खम जो होता है उसकी कमी है, इसलिए मैं आत्मा कमजोर बनी हूँ। और कमजोर बनने के कारण द्वापर युग से बहुत कमजोरियां मुझ आत्मा में रही है, अनेक आत्माओं में विकारों के अंश वंश कमजोरियों के रूप में अनुभव करते हैं। सबसे पहले कमजोरियों का हमें परीक्षण करना है, कमजोरी को हमें सबसे पहले पहचानना है कि मुझ आत्मा में कौन सी कमजोरी है। अगर कोई हमारा मित्र हमें अपनी कमजोरियों को दिखाता है, दर्शाता है, उसको भी हमने स्वीकार करना है। और कोई भी कमजोरी हमें कब दिखाई देती है स्वयं की, कब महसूस होती है, जब ये आंख रियल आई खुल जाती है तो कमजोरी का रियलाइजेशन हमें होता है। ये कमजोरी मुझ आत्मा में है, इसका डायग्नोसिस होते ही दृढ़ संकल्प की अग्नि से, योग की अग्नि हमें प्रज्वलित करना है। दृढ़ संकल्प की अग्नि बाबा ने आज की मुरली में क्यों कहा है, दृढ़ संकल्प अग्नि के समान होता है ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जितनी जिस कार्य के लिए दृढ़ता हमारे दिल में होती है उतनी सफलता हमें उस कार्य में मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि जितनी दृढ़ता होती है, हमें बाबा ने हरेक पुरुषार्थी को दो खजाने दिए हैं, समय का खजाना और शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना। तो इन दोनों खजानों को जितनी जिस कार्य के लिए दृढ़ता होती है वो दोनों खजाने हम उसके पीछे लुटा देते हैं, लगा देते हैं और दृढ़ता की अग्नि के समान अनुभव करते हैं। तो इन दोनों खजानों को लगाने के कारण हमें जो भी हमारा लक्ष्य होता है, जो भी हम कार्य हाथ में लेते हैं, उसमें मन चाहे सफलता प्राप्त करते हैं। तो कमजोरियों को मिटाने के लिए आवश्यकता है योग की अग्नि प्रज्वलित करने की, क्योंकि हर रोज हम अमृत वेले नमाज शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, हर रोज करते हैं, मुरली भी हर रोज सुनते हैं, फिर भी कोई ना कोई कमी मुझ आत्मा में सदा रहती है, दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली योग की कमी होती है। शक्तिशाली योग जब हम बढ़ाते हैं तो कोई कमजोरी आत्मा में नहीं रह सकती है। उस योग की अग्नि में कमजोरी कोई ना कोई विकार के अंश के कारण होती है। तो कमजोरी को समाप्त करने के लिए योग की अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी है और उसके लिए हमें बाबा के साथ बेहद प्यार अनुभव करना है, प्यार के सागर में हमें लीन होना है। जब हम प्यार के सागर में लीन हो जाते हैं तो आत्मा क्लीन हो जाती है। आत्मा में जो भी कमजोरी रूपी कचड़ा होता है, गंदगी होती है, वो सारी क्लीन हो जाती है और उस सागर में समा जाती है और ज्ञान सूर्य की तपत में वो भस्म हो जाती है और आत्मा कमजोरियों से स्वतंत्र हो जाती है, कमजोरियां खत्म हो जाती है। तो हमें बार बार चेक करना है गहराई से कि कौन सी ऐसा दाग है, कौन सी ऐसी कमजोरी मुझ आत्मा में है जिसमें जिसको मुझे मिटाने की आवश्यकता है। तो कमी को हम एक बार परख लेते हैं, बीमारी, कोई भी बीमार व्यक्ति बीमारी को अच्छी तरह से पहचान लेता है तो जब तक बीमारी नहीं मिटती है तब तक वो चैन का सांस नहीं लेता है। ऐसे कोई भी कमजोरी रूपी बीमारी का ध्यान हमारे जाता है तो जब तक मैंने उसको समाप्त नहीं करना है तब तक मैंने चैन का सांस नहीं लेना है। क्योंकि ये कमी और कमजोरी हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालती है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी कमजोरी, क्यों नहीं कमना देती हैं? दूसरे की अगर कमी कमजोरी हम देखते हैं तो उसका चिंतन हमारे मन में चलता है। जब भी वो व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति की याद आती है तो वो कमजोरी हमारे मन में जरूर आती है, बाबा की याद भूल जाती है। और खुद की कमजोरी होती है तो जो पुरुषार्थ हम करते हैं उस पुरुषार्थ में बाधा अनुभव होती है। इसलिए हमें कमी को अपने जीवन में रहने नहीं देना है, उसका नामो निशान हमें मिटाना है, उखाड़ के उस कमी को फेंकना है। उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। शक्तिशाली योगाभ्यास में ही ऐसी कमी कमजोरियां भस्म हो जाती हैं और उससे हम सदा के लिए फ्री हो जाते हैं। तो शक्तिशाली योगाभ्यास हमें जरूर बढ़ाते जाना है। उसके लिए क्या करना है? योग में बैठते समय स्वयं को केवल आत्मा नहीं अनुभव करना है, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस बैठक में हमें योगाभ्यास में बाबा के पास बैठना है। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए हमें बाबा के स्वरूप को भी बहुत शक्तिशाली अनुभव करना है। हमने बाबा के बाबा को ऑर्डिनरी समझा, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो हैं, लेकिन वो कौन सी हस्ती हैं जिसको हम बाबा कह रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, सर्वोच्च वो सत्ता है, उसको ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में हमें देखना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, तभी हमें ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती जाती है। और तीसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जितना परमात्म प्यार हमारे दिल में बढ़ता है उतना हम बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते हैं, प्यार के सागर में समा देते हैं, लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, शिवमय बन जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं और ऐसी शक्ति स्वरूप याद में हमारी जो भी कमी कमजोरियां हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति मिलती है, योग से हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा कमजोरियों को मिटाते जाते हैं और अच्छाइयों को जीवन में अपनाते जाते हैं। इसलिए ये दोनों शक्तियां हर पल मेरे साथ हाजिर होनी चाहिए। जब तक मैं आत्मा संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचती हूं तब तक ये दोनों शक्तियां मेरे पास हमेशा हाजिर होनी चाहिए। तो कोई भी कमी कमजोरी हमारे पास नहीं रह सकती है और कोई भी अच्छाई के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अच्छाइयों से, गुणों से, शक्तियों से स्वयं को मालामाल अनुभव करते जाएंगे। तो इसलिए विशेष हमें ध्यान देना है, ये जो कमजोरियां हैं परमात्म मिलन कि जो माज हम अनुभव करना चाहते हैं उसमें बाधा डालता है, वो मौजों की अनुभूति नहीं करने देता है। लेकिन जब कमजोरियां मिटती जाती हैं तो हम बाप समान बनते हैं, बाबा के समीप पहुंचते हैं और जितना समीप पहुंचते हैं उतना मिलन मनाने का आनंद हम लेते जाते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है, आपके जीवन में सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, आपके जीवन में गोल्डन मोमेंट्स कौन से है, तो जवाब यही मिलेगा, जब मैं आत्मा भगवान के साथ मिलन मनाने की मौज की अनुभूति करती हूँ, उनके साथ स्वयं को अनुभव करती हूँ, वो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है, डायमंड मोमेंट्स है, ये मेरी स्वयं की पूंजी है, अमूल्य पूंजी है, इस पूंजी को मैंने बढ़ाना है। क्योंकि स्वयं को परमात्म प्यार से जितना हम भरपूर करते हैं, मिलन मनाने की मौज के द्वारा जब हम स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते हैं, ऐसी आत्माओं को सारे कल्प में आत्माओं का प्यार पाने की प्यास नहीं हो सकती है। वो हमेशा हर जन्म में स्वयं को भरपूर अनुभव करते जाएंगे। इसलिए मिलन मनाने की मौज के द्वारा हमें स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है और परमात्म शक्तियों से भी भरपूर करना है और परमात्मा की श्रेष्ठ कंपनी का आनंद भी हमें बहुत लेना है। प्यार के सागर के कंठे पर बैठेंगे, सुख के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर के कंठे पर बैठेंगे, बहुत सुंदर मिलन मनाने का आनंद आप अनुभव करते जाएंगे और स्वयं को खजानों से माला माल अनुभव करते जाएंगे। इसलिए संगम है मौज मस्ती अनुभव करने का, रूहानी मौजों में सदा मस्त रहने का। इसलिए भगवान के साथ सदा रहकर मिलन हमें मनाते जाना है। मिलन मनाना अर्थात मिलते रहना, मिलन मनाना अर्थात बाबा से साथ कनेक्शन जोड़कर रखना, योगाभ्यास हमारा चलता रहे, इसको ही मिलन मनाना कहते हैं। लेकिन मिलन मनाने समय मौजों की अनुभूति करना अर्थात बेहद प्यार और बेहद आनंद और बेहद खुशी और बेहद नशे की अनुभूति करना, उसको कहते हैं मौजों की अनुभूति करना। तो हम चंद घड़ियों के लिए अभी परमात्म मिलन की मौज की अनुभूति करना चाहते हैं। तो सभी एक बार जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। ये थोड़ा सुस्ती का समय है ना, नाश्ता करके बैठे हैं ना आप, थोड़ा सुस्ती आ सकती है, इसलिए चुस्त हमें करना है खुद को, तभी हम परमात्म मिलन का आनंद अच्छी तरह से ले सकते हैं। सभी सीधा बैठेंगे, सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम ओम शांति। मैं आत्मा रूपी सजनी, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी सजनी, इस देह रूपी महल में अपने सलोने शिव साजन से मिलन मनाने के लिए तड़प रही हूं, बेचैन हूं, छटपटा रही हूं। मैं आत्मा रूपी सजनी, इस देह रूपी महल से न्यारी होकर बुद्धि रूपी डोली में बैठकर चली मैं अपने शिव साजन के साथ मिलन मनाने। मैं आत्मा रूपी सजनी, बुद्धि रूपी डोली में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन से भी पार उड़ती हुई जा रहे हो, जा रहे हो। मैं आत्मा रूपी सजनी परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल हिला दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। शिव साजन से मिलने के लिए कितना सुंदर माहौल है, यहाँ वातावरण है यहाँ। मेरे सलोने शिव साजन सत्यम शिवम सुंदरम, सलोने शिव साजन मज आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मेरे सलोने शिव साजन मज आत्मा रूपी सजनी से बेहद प्यार करते हैं, हर रोज दिव्य गुणों की आभूषणों से बड़े प्यार से मुझे सजाते हैं। उस आत्मा रूपी सजनी का भी मेरे शिव साजन के साथ बेहद प्यार है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को दिव्य चक्षु से देख रही, देखती ही जा रही हूं। मेरे दिल में परमात्म प्यार का, शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं। मिलन मनाने की मौज की अनुभूति करने के लिए समीप जा रही हूँ, अति समीप पहुंच गई हूँ, और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। शिव साजन के प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ, प्यार के सागर में सलोने शिव साजन के साथ कंबाइन हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती है। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ बेहद प्यार के सागर है, तो दूसरे तरफ बेहद शक्तियों के सागर भी है। मेरे शिव सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की प्रचंड स्रोत है। सलोने शिव साजन से बेहद शक्तिशाली किरणों की तेज बरसात मोज आत्मा सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, और योग की प्रखर अग्नि में मेरी कमजोरियां भस्म हो रही है। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा सुजनी स्वयं को कमजोरी से मुक्त अनुभव कर रही हूँ, खुशी से नशे से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्म सजनी अपने सलोने शिव साजन के साथ महामिलन मंगल मिलन की मौज की अनुभूति कर रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे सलोने शिव साजन, वहाँ मेरा भाग्य। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म सजनी डायरेक्ट भगवान जो मेरे साजन है उनके कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। क्या कहने मेरे भाग्य का, शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस से उड़कर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, और इस शरीर रूपी महल में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्मा रानी से, आत्मा सजनी से, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। कितना श्रेष्ठ यह ब्राह्मण जीवन है, मौजों का जीवन है, जिसमें संगम युग की हर घड़ी में भाग्यशाली आत्मा डायरेक्ट भगवान के साथ मिलन मनाने की मौज अनुभव कर रही हूं। वाहरे मैं ओम शांति शांति शांति। यहां ऐसा सुंदर माहौल बन जाता है, ऐसा सुंदर तरीका अपनाया जाता है जिसमें अव्यक्त मिलन मनाने का गोल्डन चांस मिलता है। और गारंटी से मैं कह सकता हूं, भगवान ने प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा मुझे दिल से बाबा कह के पुकारे, हजार भुजा वाला हजूर एक सेकंड में हाजिर हो जाता है और हमारे बीच में आ जाता है। इतने सारे भगवान के दीवाने यहां बैठे हैं और संध्या के समय अव्यक्त मिलन मनाने जा रहे हैं, तो आप अभी से अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकार स्थिति की अनुभूति को मेंटेन करते जाएंगे तो शाम को बाबा आपसे 100% गारंटी के साथ मिलेंगे। हर ग्रुप में जो भी ग्रुप आता है यहाँ, ये जो मिलन मनाने का तरीका अपनाया जाता है, इतना सुंदर अनुभव करके जाते हैं, सभी आत्माएं खुशी में झूमते रहते हैं कि सचमुच मधुबन में आना मेरा सफल हुआ। भगवान के साथ जैसे डायमंड हॉल के स्टेज पर डायरेक्ट बाबा आते हैं, मिलते हैं, ऐसा डायरेक्ट अनुभव आपको बाबा कराएंगे। लेकिन उसके लिए पूर्व तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी और इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बात मत पूछो। भरपूर बाबा आपको खजानों से करेंगे, शक्तियों से करेंगे। मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां सिडनी में यूथ के प्रोग्राम में 100 यूथ थे, वहां हमने ये बाबा के साथ मिलन, अव्यक्त मिलन मनाने का सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया था। एक एक बच्चे को इतना सुंदर अनुभव हो रहा था, सब कुछ में झूम रहे थे। तो आज संध्या के समय बाबा आपसे जरूर मिलन मनाने आएंगे और आपको सर्व शक्तियों से, प्यार से, खजानों से भरपूर करेंगे।